इशू तो यही है कि रिकंसिलिएशन के प्रोसेस पे बात हो. सबसे पहले तो टू बिगिन विद हमारी हमेशा से ये रही है एक तरह की कन्विक्शन कह लीजिए कि अफगानिस्तान में देफा अमन के लिए जरूरी है कि जो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस हो इट शुड बी अफगान ओन्ड एंड अफगान लेड. और इस सिलसिले में हम बारहा ये कह चुके हैं कि इसमें किसी भी तरह से पाकिस्तान जो भी मदद कर सकेगा तो वो ऑब्वियसली विल बी देयर. तो कल जैसा कि आपको मालूम है कि सलाउद्दीन साहब बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर की इनविटेशन पे पाकिस्तान आ रहे हैं और कल उनसे तफसील मुलाकात होगी. उनके साथ तकरीबन 15 और अरकान हैं जो उनके जरगे के जो उनकी काउंसिल के होंगे. तो फिर इंशाल्लाह जब बात होगी तो फिर देखेंगे, विल टेक इट फ्रॉम देयर.
ये बताइए कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या है बुनियादी तौर पर?
जी बेसिकली तो रिकंसिलिएशन प्रोसेस इन अफगानिस्तान दैट वुड बी द मेन एजेंडा. और उसके बारे में जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसके उनके ऊपर डिस्कशन हो.
अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान किस हद तक, ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान इन जंगजू ग्रुपों पर असर रसूख रखता है, तो इस बात में कितनी हकीकत है? किस हद तक पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है?
ये तो खैर वो किसी पिटी बात चलती रही है अमीन यू नो. लेकिन एज ए सेड के बेसिकली इस मामले में और इस सिलसिले में हम बारहा कह चुके हैं. और अगर आपको याद हो साबिक प्राइम मिनिस्टर ने भी इनफैक्ट तमाम ग्रुप्स के ऊपर को ये रिक्वेस्ट की थी, उनसे ये उनको अर्ज किया था कि वो तमाम ग्रुप जो हैं वो एक साथ मिलकर बैठकर अपना यू नो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं. इन्फ्लुएंस मतलब यू नो हमारा कोई इसमें कोई फेवरेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है. हम चाहते हैं हमारे लिए तमाम अफगान ग्रुप जो हैं वो एक जैसे हैं और हम चाहते हैं कि तमाम ग्रुप जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके बैठ के अपने यू नो रिकंसिलिएशन प्रोसेस को बढ़ाएं. ये वही पुरानी बातें कि जी कि वो फ्रांस फेवरेट किसका है, ये है वो है. आई थिंक नाउ वी हैव पास यू नो दैट स्टेज इन अ सेंस के वो एज ए सेड के कोई फेवरेट नहीं है हमारे लिए. बेसिकली तमाम ग्रुप जो हैं वो यू नो
बराबर हैं. अच्छा एक बात और ये बताइए कि मलाला के ऊपर जो हमला करने वाले लोग थे उनके बारे में कल करजई साहब ने कहा है, पाकिस्तान उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और किस तरह से आप दोनों कंट्रीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो रहा है सिलसिले में?
हमने करजई साहब को कुछ डोसियर्स कुछ इन्फॉर्मेशन फराहम की हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी उन इन्फॉर्मेशन और उन डोसियर की बेसिस के ऊपर एक्शन लेंगे. और ये वही लोग हैं बेसिकली जिन्होंने एटलीस्ट अभी तक जो अखबारों में हमने पढ़ा है और जो देखा भी है और क्लेम किया है कि यू नो कि वही मलाला की मारने की कोशिश में वो देवर द पीपल हुआ बिहाइंड. हमने भी यू नो बेसिकली उन्हीं लोगों से रिलेटेड डोसियर्स और उन्हीं लोगों से इंफॉर्मेशन जो है वो आईएसएफ से भी शेयर की हुई हैं और अफगान गवर्नमेंट से भी शेयर की हुई है. सो वी होप के अफगान गवर्नमेंट उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेगी.
रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ये फरमाइए कि पाकिस्तान से इस बात के लिए कहा जाएगा कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उन ग्रुपों से इफाम व तफहीम के लिए कोशिश करे, पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है इस सिलसिले में?
पहली बात यह है कि कोई ग्रुप्स नहीं है, सिर्फ एक ही ग्रुप है और इसकी क्यादत मुल्ला उमर कर रहे हैं और हकानी साहब उनका हिस्सा है. कोई दूसरे ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ही ग्रुप है. दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो कोशिश कर सकता है या कर सकेगा उसके लिए माहौल अफगान हुकूमत वक्तन फोक्तन खराब कर देती है. मसलन 3 हफ्ते पहले करजई साहब ने बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट उस सूरत में होगा जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को तबाह करने की कोशिशें बंद कर देगा. उसके बाद उन्होंने बॉम्बे में बयान दिया कि जो कुछ पाकिस्तान ने किया था, जो बीज पाकिस्तान ने बोया था, वो पाकिस्तान अब उसका जो है वो फल खा रहा है और पाकिस्तान इन्हीं लोगों को ट्रेन करता रहा है जिन्होंने मलाला पे हमला किया था. अब ये बयानात इसके प्रसंदर में अगर सलाहुद्दीन साहब आते हैं तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये माइंडसेट को अफेक्ट करने वाली बातें हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान पे मुसलसल जो इल्जामात डाले जा रहे हैं और जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है. तो इस पस मंजर में इस माहौल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए शायद ये मुश्किल होगा कि वो एक जेन्युइन फोकस्ड रिकंसिलिएशन एंडेवर जो है वो अंडरटेक करे.